గోపీజన వల్లభ గిరివర ధారీ యశోదానందన ప్రజజనరంజన యమునా తీరా వనచారియం యమునా తీరా వనచారియం జయో రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయో రాధా శ్యామ సుందర రాధా శ్యామ సుందర రాధే జయో కృష్ణ బలరామ్ కృష్ణ బలరామ్ కృష్ణ బలరామ్ జయ కృష్ణ బలరామ్ జయో గౌరనితాయ 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 జయ గౌరనితా జయ 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 ప్రభుపాద 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 జయ ప్రభుపాద ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ హం చైతన్య చరితామృత సే పఢ్ రే హై ఆది లీలా పహలా అధ్యాయ ఔర్ శ్లోక నంబర్ 47 ముజే బహుత్ ప్రసన్నతా హై ఆజ్ బహుత్ సమయ బాద్ ముజే బ్రజ ధామ్ ఔర్ బ్రజవాసియో కా సంగ్ మిల్ రహా హై ఆప్ సబ్ బ్రజవాసియో కే చరణో మే ప్రణామ్ ఔర్ ఆప్కా ఆశీర్వాద్ చాహతా హూ జిస్సే కి మే శిల ప్రభుపాద్ కే ద్వారా అనువాదిత్ చైతన్య చరితామృత పే థోడీ చర్చా కర్ సకే ये सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है चैतन्य चरितामृत हमारे गौड़ीय वैष्णव का प्राण धन है तो आदि लीला का पहले अध्याय से और श्लोक नंबर है 47 चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्स 47 आदि लीला पहला अध्याय श्लोक नंबर 47 जो यहाँ पर आपको वहां से दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाइए, अगर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा सब जो प्रभु जी से थोड़ा सा अपने दाहिनी हो जाए। शिक्षा गुरु के ते जाने कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूपा। शिक्षा गुरु के ते जाने कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूपा। शिक्षा गुरु के ते जाने कृष्ण स्वरूपा, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूपा। नर्तकी माता जी लाइक टू रीड। शिक्षा गुरु के, शिक्षा गुरु जो आदेश उपदेश देते हैं तो निश्चित रूप से जानी, मैं जानता हूँ कृष्णेरा कृष्ण के स्वरूपा, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अंतर्यामी, अंतर्यामी परमात्मा भक्त श्रेष्ठ, भक्त श्रेष्ठ ए ये दुई दो रूपा, रूपा अनुवाद एवं तात्पर्य शील ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हमको भीतर से और बाहर से गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं। भीतर से वो हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से भी गुरु के भांति भगवद्गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वो है जो मुक्त अवस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहते हैं और दूसरा वो है जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपारक और आत्मपारक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है और इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है तब उसका अभिधेय भक्ति का शुभ आरंभ होता है। भक्ति के क्रियाओं को अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती है। हमारी एकमात्र आश्रय परमेश्वर है और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक कैसे पहुंचा जाए, वो भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रयदाता, शरणदाता भगवान और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इससे अंतर करता है तो भक्ति साधना में अपराध करता है। श्रील सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमल की शरण प्रदान करते हैं। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर सारे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवद्गीता का शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश करते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन का साकार रूप है, जबकि शिक्षा गुरु श्रील गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि है। इन दोनों अड़चे विग्रह की पूजा वृंदावन में की जाती है और श्रील गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो मैं बहुत हृदयपूर्वक सब एकत्रित भक्तों को प्रणाम करता हूँ, का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत समय बाद मुझे वृंदावन में धाम में आने का अवसर मिला। जो वैष्णव यहाँ पर 12 महीने रह रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। हालांकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, सूर्यदेव अपार कृपा कर रहे हैं। मैंने सुना 40 डिग्रीज क्रॉस हो गया है, लेकिन जो दृढ़ निश्चय है उसको कोई रोक नहीं सकता वृंदावन में रहने से। तो मेरा तो सौभाग्य उतना नहीं है, मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर हूँ। लेकिन कहते हैं कि ब्रज में अगर 2 या 3 दिन भी रहें तो भी बहुत कृपा है। जो भी कृपा राधा रानी प्रदान करें उसमें भक्त को बहुत कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। और आप सब भक्त जो बाहर से आए हैं कुछ दिनों के लिए, वो भी भाग्यशाली हैं। हर व्यक्ति को इच्छा होती है कहीं घूमने की, इस प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तीर्थ यात्रा में जाने से। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, कितने सारे तीर्थ हैं भारतवर्ष में। जनरली लोग सोचते हैं कि अमेरिका जाना या ऑस्ट्रेलिया जाना ये बहुत भाग्य की बात मानी जाती है, लेकिन वास्तव में परम सौभाग्य तब है जब हम भगवान के धाम में आते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, व्हाट डज इट मीन टू स्टे इन वृंदावन, वृंदावन में रहने का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने कोई किराए पे कमरा ले लिया या फिर बांके बिहारी की लस्सी पी ली तो हमारा वृंदावन सफल हो गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, टू स्टे इन वृंदावन मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी का आश्रय लेना जो श्रीमती राधा रानी। मतलब मैं तो बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, बहुत सारे मंदिर देखे हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी ने ही कहा है और आप सबको भी अनुभव होगा, मुझे भी है, कि पूरे ब्रह्मांड में राधा श्याम सुंदर से बढ़कर और कोई सुंदर नहीं है। स्पेशली श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के बस हम देखते हैं ऑल्टर में गौर नेता ये कृष्ण बलराम का डिमांड रहता है, लेकिन राधा श्याम सुंदर के बहुत भीड़ रहती है हमेशा, क्योंकि उसका शेयर मार्केट रेट हाई रहता है हमेशा, सब वहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते। तो मेरा सौभाग्य आप सब आशीर्वाद दीजिए, स्पेशली श्रील प्रभुपाद के आदरणीय शिष्य नर्तकी माता जी और दूसरे डिसाइपल्स प्रभुपाद जी के और दूसरे गुरुओं के डिसाइपल्स, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। वृंदावन आने पर ऐसा लगता है कि घर वापस आ गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन इज़ माई होम, वृंदावन मेरा घर है, और जो दादाजी का घर है वो पोते का भी घर है, हम सब प्रभुपाद जी के फैमिली में हैं, तो हम सब कह सकते हैं मेरा घर है। आज ये जो श्लोक, एक्चुअली ये हर सोमवार को होता है ऐसे चैतन्य चरितामृत, बहुत अच्छा लगा मुझे, भगवान का अरेंजमेंट है कि धर्मात्मा प्रभु जी ने मुझे दयापूर्वक ये सेवा दी। आप में से कितने भक्तों के पास ये चैतन्य चरितामृत सेट हिंदी में है? मेरे पास यहाँ पे चैतन्य चरितामृत सेट उपलब्ध है, लेकिन विशेष करके कोई एक भक्त ने मुझे थोड़ा सा डोनेशन दिया था, तो मैंने सोचा डोनेशन का उपयोग मैं चैतन्य चरितामृत के लिए करूँ। तो मेरे पास 8-10 सेट हैं जो कि डिस्काउंट रेट में हैं, वो खाली उनके लिए है जो यहाँ पे आज क्लास में हैं। तो 9 बजे के बाद वृंदावन विहारी प्रभु को अगर अपना नाम दे देते हैं तो आप वो ले सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से एग्जैक्ट रेट यहाँ हम चीज़ रेट यहाँ वृंदावन विहारी प्रभु के आशीर्वाद से जो यहाँ पे जनरली सेट 2000 या 2100 का होता है वो 500 रुपये का डिस्काउंट है, तो आप 1500 रुपये में ले सकते हैं। हरी बोल। और पहला सेट वृंदावन विहारी प्रभु के लिए, उनके लिए तो पूरा ही फ्री है। आपके पास तो होगा ही, 2 सेट होंगे आपके, पहला सेट प्रभु जी के लिए टोटल फ्री। एक्चुअली बेस्ट पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रंथ हैं, उसको भागवत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे और भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते रुक गए प्रभुपाद, और क्या अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने? चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, आई वॉन्ट द बुक रेडी इन 2 मंथ्स। प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, उसके बाद टाइपिंग करना है, फिर प्रूफ रीडिंग करना है, फिर एडिटिंग करना है, फिर पेंटिंग करना है, ये सब पूरा होना चाहिए 2 महीने में। तो भक्तों ने क्या जवाब दिया? इम्पॉसिबल, असंभव। और प्रभुपाद जी क्या बोले? इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, मूर्खों के शब्द में। तो इसीलिए प्रभुपाद के शिष्यों ने करके दिखाया। कई भक्त तो जो पेंटिंग करते थे ना, 12-12 घंटे पेंटिंग करते, और कई बार आई थिंक वॉज इन लॉस एंजलिस माता जी, वे आर डूइंग ऑल दी पेंटिंग्स, माता जी मस्ट हैव बीन विटनेस। कैन यू रिपीट इट अगेन, बिकॉज डिवोटीज कुड नॉट हियर लाउड।
वो पहले इस आज्ञा से पहले जो भक्त लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, वो 1 महीने 1 पिक्चर पेंट कर रही थी तो अभी ये संभव करने के लिए 24 घंटे पेंट करना पड़ा सो 24 घंटे कोई आदमी नहीं पेंट कर सकते है ना सो वो उनका अहंकार छोड़ना पड़ा मैं इस पिक्चर का आर्टिस्ट हूँ सो इसलिए खाए खाए भक्त लोग तब एक थक गई दूसरा वाला आ गया और इस पेंटिंग भी कर रही थी पेंट कर रही थी सो आंत में बहुत सुंदर पिक्चर्स बन गए
हरी बोल माता जी का बहुत सुंदर पॉइंट बता रहे हैं कि क्या होता था कि 24 घंटे पेंटिंग करना होता और एक डिवोटी नहीं कर पाते अब मेरे को एक भक्त बता रहे थे कभी कभी करते करते डिवोटी थक के गिर जाते थे फिर उनको सुला देते दूसरा डिवोटी पेंटिंग करना शुरू हरे कृष्ण तो ये मैराथन है तो प्रभुपाद जी कितने खुश होंगे देख कर कि आप सब वृंदावन में चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं इसीलिए आज सवेरे के साथ साथ शाम को भी क्योंकि आज तो सवेरे तो समय सीमित होता है एक घंटा शाम को भी 5 बजे आज और कल मैं चैतन्य चरितामृत कंटिन्यू करूँगा यही सेक्शन क्योंकि आज जो सेक्शन चुना गया बहुत गहरा है इसमें एक रहस्य बताया गया शिक्षा गुरु के बारे में वो ये है कि शिक्षा गुरु जो है वो अंतर्यामी भगवान के प्रतिनिधि हैं अलग अलग प्रकार से भगवान प्रकट हो रहे हैं जीव को मार्गदर्शन करने के लिए एक दीक्षा गुरु वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो दीक्षा प्रदान कर रहे हैं जो मंत्र दे रहे हैं शिक्षा गुरु जो उपदेश कर रहे हैं और पथ प्रदर्शक गुरु जो पहले हमें भक्ति से इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबका आदर करना चाहिए अधिकांश जगह पे क्या होता है कि प्रवृत्ति होती है कि हम दीक्षा गुरु का तो आदर करते हैं लेकिन फिर शिक्षा गुरु के बारे में कई बार हम आदर करते हैं या शुरुआत में करते हैं फिर बाद में बोलते हैं अरे अभी तो मुझे बड़े गुरु मिल गए ये चिल्लर का क्या ज़रूरत है ये तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था पहले बुक दी थी लेकिन वो तो दीक्षा गुरु का तो सबसे ज़्यादा आदर होना ही चाहिए लेकिन उतना ही आदर शिक्षा गुरु के होने चाहिए और इस्कॉन में हर एक भक्त को यह मानना चाहिए कि जो भी मेरे गुरु हैं उनके सारे जो गुरु भाई हैं वो सब मेरे शिक्षा गुरु हैं जैसे मान लो आपके गुरु महाराज हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज परम पूज्य जयपतक स्वयं महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज परम पूज्य लोकनाथ महाराज परम पूज्य भक्ति चारु महाराज कितने सारे तो अगर आप एक को अपना दीक्षा गुरु मानते हो तो अपने आप बाकी सब शिक्षा गुरु हो जाते उससे इस भावना से हमें स्वयं भी शुद्धिकरण होता है और इस्कॉन में एकता का भाव भी बना रहता है यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में साफ बोलते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद मानना अपराध है अभी कई बार ऐसा हो जाता है हमारे से न जानते हुए अपराध हो जाता है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये गुरु तो बहुत अच्छे हैं वाह इनका लेक्चर तो कितना मज़ेदार होता है ये दूसरे गुरु हैं बहुत ही ठीक है ये भी हैं लेकिन ये उतने एडवांस नहीं हैं क्योंकि हम बाहर से जज करते हैं एडवांसमेंट को कि हम सोचते हैं कि जो इम्प्रेसिव वे में बोल रहा है या जिसके ज़्यादा डिसाइपल्स हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड है अभी कौन एडवांस्ड है एक्चुअली वो तो सिर्फ राधा श्याम सुंदर जानते हैं और हमें अपने दीक्षा गुरु को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है मान लो कोई दूसरे दीक्षा गुरु ज़्यादा एडवांस भी हों तो भी नेचुरल जैसे हर बच्चा सोचेगा कि मेरे माता बेस्ट है मेरे पिताजी बेस्ट हैं नेचुरल है दूसरे पिता ज़्यादा अमीर भी हों तो भी हर बच्चा अपने पिता का सबसे ज़्यादा आदर करेगा लेकिन पिता के आदर के साथ साथ चाचा का ताऊ का पिताजी के भाई पिताजी के बहन उनका भी आदर करना तो इस्कॉन जो एक बहुत विशाल परिवार है जैसे अभी समय बीतता जाएगा तो और बढ़ता जाएगा जैसे प्रभुपाद जी दीक्षा दिए 77 तक फिर प्रभुपाद के शिष्य दीक्षा दिए और धीरे धीरे प्रभुपाद के शिष्य दीक्षा दे रहे मान लो 100 साल बाद कैसा होगा आप में से कोई रहेगा यहाँ पर 100 साल बाद हरी बोल वृंदावन बिहारी प्रभु बोल रहे हैं मैं च्यवनप्राश खाता हूँ मैं रहूँगा लेकिन च्यवनप्राश आप डाबर का लो और क्या वैद्यनाथ झंडू और सब मिक्स करो तो भी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि च्यवनप्राश किसने बनाया पवन प्रभु च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने बनाया और वो कहाँ पे हैं अभी वो भी चले तो 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे लेकिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना ऐसी की है कि आगे 10,000 साल तक ही चलता रहेगा और इसको एक साथ चलते रहने के लिए एकता बहुत ज़रूरत है क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि बाहर से हमारी संस्था को कोई डर नहीं है हमारी अगर साधना अच्छी बनी रहे कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती, लेकिन सबसे बड़ा डेंजर है माया को अंदर से कार्य करती, भक्तों में आपस में झगड़ा पैदा करना। कोई भी मुद्दे को लेकर या गुरु के मुद्दे को लेकर या आश्रम को, कई बार विभाजन हो जाता है ब्रह्मचारी गृहस्थ में। जैसे हमारे यहाँ भी मुंबई में राधा गोपीनाथ टेम्पल जब शुरू हुआ तो ब्रह्मचारी गृहस्थ में बहुत विवाद होता था। ब्रह्मचारी सोचते थे गृहस्थ तो विष्ठा में पड़े हुए कीड़े के समान है, और गृहस्थ बोलते थे ब्रह्मचारी को आप कुछ कर नहीं रहे हो, पैरासाइट हो, आप तो 9 से 5 कोई जॉब करके दिखाओ, है ना, आपको जॉब नहीं मिला इसलिए भगवे कपड़े धारण कर लिए आपने, है ना, है ना। ये बाद में जब परम पूज्य राधानाथ महाराज बम्बई में आए और उन्होंने राधा गोपीनाथ टेम्पल का मैनेजमेंट संभाला तो उन्होंने एक कल्चर पैदा किया कि दोनों को एक दूसरे का आदर करना है। कि हमारे महाजन देखते हैं 12 महाजन हैं, कौन कौन से 12 महाजन हैं, स्वयंभू, ब्रह्मा, एक एक नाम बताइए, और नारद, शिवजी, कुमार, प्रहलाद, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, जनक, बलि महाराज, सुखदेव महाराज, और लास्ट यमराज। यस, आप सबके फेवरेट यमराज जी ने कई बार विजिट किया होगा, आप इस्कॉन में आ गए तो आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई। सब ऐसा बोलते हैं कि जिसने एक बार भी सच्चे दिल से भगवान का नाम पुकारा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जिसने एक बार भी हरि का नाम सच्चे दिल से लिया, यमदूत उसको परेशान नहीं करें। प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, जनरली साधारण व्यक्ति यमदूत को देखकर डर जाते हैं क्योंकि यमदूत मतलब पनिशमेंट, लेकिन यमदूत कृष्ण भक्तों को देख के डर जाते हैं। कि यमदूत को याद आता है, अरे बाप रे अजामिल की कहानी याद है ना, भागो भागो। तो ये 12 महाजन हैं, उसमें भी 7 गृहस्थ हैं, नहीं स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी और नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, शंभू शिव जी गृहस्थ हैं, प्रहलाद महाराज गृहस्थ हैं, बलि महाराज गृहस्थ हैं, सुखदेव स्वामी ब्रह्मचारी हैं, यमराज गृहस्थ हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये इसमें भी कॉम्बिनेशन है ब्रह्मचर्य गृहस्थ। एक बार प्रभुपाद जी किसी लेक्चर में बोल रहे थे 12 महाजन के नाम, तो एक डिवोटी ने हाथ ऊपर किया, बोले प्रभुपाद यू आर 13th, आप 13वें हो। प्रभुपाद जी बोले यू आर 14th। क्योंकि महाजन को फॉलो करो, आप महाजन हो, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अपने पूर्वजों को फॉलो करो। प्रभुपाद जी बोलते मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, आई ब्लाइंडली फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु महाराज ने बोला पुस्तक वितरण करो, मैंने किया, उन्होंने बोला प्रचार करो, मैंने किया। तो जो भी सेवा दी जाए, अभी कई बार डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी मेरे तो गुरु जी से कॉन्टैक्ट नहीं होता, कभी कभी गुरु महाराज विदेश में होते हैं, कई बार गुरु महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, और अच्छा हो भी 10,000 डिसाइपल हैं तो हर एक को एक एक मिलने लगे तो 10,000 साल के बाद नंबर आएगा। तो हर गुरु पर्सनली नहीं भी मिले, अगर आप टेंपल अथॉरिटी से आज्ञा पालन कर रहे हैं जो गुरु के प्रतिनिधि हैं, अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक के अनुसार जीवन बिता रहे हैं तो अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन में हर एक गुरु यही बताएंगे सवेरे जल्दी उठो, मंगल आरती अटेंड करो, नहीं और जपा ध्यान पूर्वक करो, भागवत सुनो, प्रसाद लो। प्रसाद लेना बोलते नहीं, वो कंपलसरी, लेकिन वो वॉलंटरी है, वो हर एक व्यक्ति पालन करता है। तो बहुत एक बार एक डिवोटी मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ने अब दीक्षा दी तो उन्होंने बोला 4 नियम पालन करो और 16 माला जप करो, भागवत रोज सुनो, ये तो नहीं व्रत था मेरा, आप क्यों बोलते हैं रोज भागवत सुनना चाहिए। तो मैंने जवाब दिया प्रभुपाद जी ने नियम नहीं दिया कि रोज प्रसाद खाओ, लेकिन आप पालन करते हैं कि नहीं इसका, आप में से कौन है जो दिन में कम से कम एक बार प्रसाद लेते ही हैं, ये ना, बल्कि यहाँ पे या 2 बार लेते हैं, नहीं बाकी लोग 3 बार लेते होंगे, है ना। तो हमें पता है कि अगर मैं अनाज नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं रेगुलरली प्रसाद लूंगा तो मेरा शरीर एकदम वृंदावन बिहारी प्रभु की तरह स्ट्रांग रहेगा। और उनको तो प्रसाद के साथ थोड़ा महाप्रसाद भी आ जाता है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल इतनी अच्छी सेवा करते तो राधा रानी महाप्रसाद भी दे देती है। जैसे हमारे लिए प्रसाद है भागवतम गीता, लेकिन चैतन्य चरितामृत महाप्रसाद है, ये ना, उसमें चैतन्य चरितामृत रसगुल्ला की तरह है, स्वीट है। हर को दाल चावल तो रोज खाते ही हैं, लेकिन स्पेशली कभी कभी स्वीट खाना चाहिए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कैसे भी करके रोज चैतन्य चरितामृत पढ़िए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बैग बोरो और स्टील, किताब नहीं है तो मांग के लो, और नहीं तो भीख मांग के लो, या मांगो या चुरा के पढ़ो। चुरा के पढ़ो मतलब पढ़ के वापस दे दो बाद में। तो इसलिए मैंने पता नहीं, मेरा प्लान था, जस्ट मैंने बताया आपको कि मेरे को 10 सेट्स के लिए थोड़ा लक्ष्मी आया था, भगवान का अरेंजमेंट आया। सुबह ही किसी धर्मात्मा प्रभु जी ने मुझे क्लास के लिए रिक्वेस्ट किया, तो प्लीज़ आप ज़रूर, अगर आपके पास नहीं है तो लेके जाइए चैतन्य चरितामृत, एटलीस्ट नाम दे दीजिए, मुझे उसको मंगाना पढ़ने में 2-3 दिन लगेंगे कुरियर से। और एक भक्त वो भी तैयार हो गए जो कुरियर भी फ्री में सेवा कर रहे हैं, नहीं तो कुरियर करने का 200 रुपये लगता है। तो प्लीज़ सब लोग, और किसी को बहुत समस्या है, लक्ष्मी नहीं दे सकते तो आप ले जाइए, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। मैंने एक बार ऐसे अनाउंसमेंट हैदराबाद में ऐसे किया, आपको बताया था मैंने, मैंने ऐसे अनाउंस किया कि ये बुक्स ले जाइए, और किसी के पास नहीं है तो ऐसे ही ले जाइए। तो बाद में लेक्चर के बाद 2 व्यक्ति बोले हाँ हमको फ्री में चाहिए। तो मैं सोचा अभी क्या होगा मेरा, फिर और भी लोग बोले आप फ्री में दे रहे हैं। तो उतने में एक अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं 2 लाख रुपये दे रहा हूँ 100 सेट के लिए। मतलब भगवान की किताबों में ना पैसे का नहीं सोचना चाहिए, भगवान दे देते हैं। अब मैं पुणे में था, मेरा गौर पूर्णिमा में मेरा लेक्चर था 3 दिन के लिए, और मैंने यही पॉइंट बताया चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो एक भक्त हमारे विभव कृष्ण प्रभु, वो वृंदावन में भी रहते हैं, उनके उनके ससुराल ससुर जी और इसके प्रभु जी के ब्रदर इन लॉ, तो वो उन्होंने इतने अच्छा लगा चैतन्य चरितामृत, वो बोले मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ, है ना। तो मैं सोच रहा था कि अरे ये भगवान मुझे, मैं मेरी श्रद्धा इतनी कमज़ोर है, तो भगवान मेरी श्रद्धा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमें पता नहीं राधा श्याम सुंदर वो कितने सेट स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके श्वास श्वास से पूरे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो किताबों में जब भगवान की किताब पढ़नी होती है तो पैसे का सोचना ही नहीं चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जो अपने जो भगवद्गीता में क्या है, भगवद्गीता में बेसिक ज्ञान है कि भगवान कौन है। भगवान बोलते हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षिम च सर्वश, मैं सबका स्तोत्र हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवान क्या है वो पता है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं क्रिया, वो भागवत में पता चलते हैं। भगवान की लीलाएं वामन रूप, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार, स्वयं कृष्ण। लेकिन चैतन्य चरितामृत में क्या दिया गया, भगवान क्या सोच रहे हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जानना ये उतना मुश्किल नहीं है, यस प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली का एड्रेस है, लेकिन क्या कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा और जानकारी, न्यूज़पेपर देखना होगा और आर्टिकल्स में पता चलेगा, टीवी में पता चलता है उसके कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो तो पेपर में नहीं मालूम पड़ेगा, वो उनके बहुत जो क्लोज पार्षद है अमित शाह है उससे पता चलेगा, है ना। तो ऐसे भगवद्गीता में भगवान कौन है ये बताया गया, भागवत में भगवान क्या करते हैं वो बताया गया, और चैतन्य चरितामृत में भगवान क्या सोच रहे हैं वो बताया गया। गुह्य चीज़ें, राधा भाव, कृष्ण सोच रहे हैं मैं स्वयं राधा रानी के प्रेम का मतवाला हो जाता हूँ, जब राधा रानी को देखता हूँ तो मैं इतना आकर्षित होता हूँ, मेरी मुरली हाथ से गिर जाती है। तो राधा रानी का प्रेम क्या है, क्या सुंदरता है राधा रानी की, मेरे अंदर क्या गुण है जो राधा रानी को आकर्षित करते हैं, इसको जानने के लिए और अवतार के रूप में आते। राधा भाव द्युति सुवलिता नवमी कृष्ण स्वरूपम, तो चैतन्य चरितामृत सबसे गुह्य शास्त्र है। फिर आप बोलोगे प्रभु जी ऐसा बताया जाता है कि पहले गीता पढ़नी चाहिए, फिर भागवत पढ़नी चाहिए, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए, अब मेरा भागवतम पूरा ही नहीं, 5वें स्कंद में नरक लोगों को पढ़ते पढ़ते ही टाइम बीत रहे हैं। मेरा क्या होगा। तो यही प्रश्न परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज पार्षद रहे, बम्बई मंदिर के प्रेसिडेंट रहे, तो यही प्रश्न गिरिराज स्वामी महाराज ने प्रभुपाद से पूछा। तो प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद मैंने भागवतम नहीं हुआ है, मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ सकता हूँ? प्रभुपाद जी बोले, माई बुक्स आर लाइक गुलाब जामुन, मेरे पुस्तक गुलाब जामुन की तरह। आप में से कितने लोग गुलाब जामुन खाते हैं? अच्छा, आप गुलाब जामुन जब खाते हैं तो कहाँ से खाना चाहिए, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से? तो सोचते नहीं, तुरंत ही खा लेते हैं। अब वृंदावन बिहारी प्रभु है तो दो एक साथ भी खा लेते हैं ना। तो ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा कि जनरल ऑर्डर नहीं फॉलो करना चाहिए, जनरल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, लेकिन मान लो आपका 3 घंटे समय है, अब भागवतम 1 घंटा पढ़ लिया, भगवद गीता पढ़ लिया और एक्स्ट्रा टाइम है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते। कोई कोई भाग है चैतन्य चरितामृत थोड़े से जटिल हैं, थोड़े से भाग हैं, आदि लीला में कुछ भाग हैं, लेकिन जैसे आदि लीला का 13वें अध्याय 17वां अध्याय बाल्य लीला है, अंत्य लीला में जगन्नाथ पूरी लीला है। और प्रभुपाद क्या करते हैं, जहाँ भी कोई कठिन पॉइंट है वहाँ पर तात्पर्य देते हैं, जैसे आज प्रभुपाद जी ने इतना लंबा तात्पर्य दिया और संबंध अभिधेय सबके बारे में बताया गया। और मैं ये बताऊंगा, अगर आपका समझ में नहीं भी आता तो भी पढ़िए चैतन्य चरित। जैसे डॉक्टर बोलता है दवाई खाओ, यू नो कोई नाम है समझो क्रोसिन, डॉक्टर कई बार अलग अलग सिन को दूर करने के लिए क्रोसिन माइसिन योर सिन करते रहते हैं ना, तो आपको पता नहीं है कि ये दवाई का क्या नाम ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने लिख के दिया, आपने खरीदी कि आपने खा लिया, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है हमें याद नहीं रहे, कई बार लोग भागवत भी पढ़ते हैं कोई श्लोक याद नहीं होता, कोई बात नहीं, आपको लाभ तो मिल रहा है। नहीं मुझे पता नहीं है, कल रामनवमी फीस्ट था, मैंने खाया पूरी था सब्जी था, अभी सब्जी एग्जैक्टली क्या थी मुझे पता नहीं है, खीर का चावल कौन से जगह से आया तो पता नहीं है, लेकिन मैंने खा लिया तो मेरे को उसका लाभ मिल गया। तो हो सकता है कि आपको भागवत का चैतन्य चरितामृत का हर एक श्लोक समझ में न भी आए, मेरे ख्याल से शायद ही कोई इस्कॉन में भक्त होगा जिसको सारे 18,000 श्लोक समझ में आ गए हो, अगर होगा तो वो गोलोक का वासी होगा, है ना। टेक्निकल बहुत सारे हैं, अभी कोई मुझे बोले 5वें स्कंद में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे किया जाता है, मेरे को इतना याद है कि स्वर्गलोक जनलोक तपोलोक है ऊपर, नीचे तो पाताल लोक है, लेकिन डिटेल याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं रहता इसका मतलब आप चैतन्य लीला के लिए योग्य हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार मंद सुमंद बुद्धि के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए एक ही पात्रता है, एक ही क्वालिफिकेशन। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था चैतन्य वो क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे नदी का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर आता है, वैसे भगवान गौरंग की कृपा सबसे पतित के लिए ज्यादा है। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं द मोर फॉलन यू आर द मोर योर क्लेम टू रिसीव द फेवर ऑफ लॉर्ड गौरंगा। कल परम पूज्य जयपदक स्वामी महाराज का व्यास पूजा का दिन है, उनको बहुत अच्छा लगता है जोर से बोलना गौरंगा। तो हिंदी में अनुवाद है जितना ज्यादा आप पतित हो उतना ज्यादा आपको अधिकार है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा का। जैसे इस दुनिया में स्कूल में या कॉलेज में जब आप कोई स्कॉलरशिप को क्या बोलते हैं हिंदी में, छात्रवृत्ति यस। हिंदी में कोई कोई शब्द बहुत कठिन होते, जैसे रेलवे के लिए शब्द है लोह पथ गामिनी। वो शायद किसी को पता भी नहीं होगा, रेलवे मिनिस्टर को भी नहीं मालूम होगा। तो स्कॉलरशिप में आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पिताजी की सैलरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है ना, पूछते हैं। तो आपको क्या बताना चाहिए, जितनी है उससे ज़्यादा बताना चाहिए या कम बताना चाहिए? हाँ, वो फार्मूला मैंने भी यूज़ किया था। मैं जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीटेक कर रहा था वहाँ, तो 5 साल अविद्या एकत्र किया था वहाँ पर मैंने, तो मैंने भी सैलरी सबको बता दे कम लिखना होता है। ऐसे भगवान के सामने जब आप जाते हो तो अपने आप को सबसे पतित बताओ तो जल्दी कृपा मिलेगी। अगर आप राधा श्याम सुंदर गौर निताई कृष्ण बलराम के पास जाके बोलते हो मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, 30 साल से इस्कॉन में हूँ, मैंने प्रभुपाद के दर्शन किए, मेरे प्रवचन से सब लोग शुद्ध हो रहे हैं, यू नो आप मैं पतित पावन, आप भी पतित पावन हो लेकिन मैं भी हूँ, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ। तो भगवान बोलेंगे गेट लॉस्ट, जाओ वापस बम्बई पुणे निकल जाओ आपके, इसीलिए मैं कल जा रहा परसों जा रहा हूँ, यू नो क्योंकि मेरी मेंटेलिटी। लेकिन कोई बहुत नम्र है हमारे आदरणीय प्रभुपाद डिसाइपल्स नर्तकी माता जी की तरह, वेरी वेरी हम्बल ह्यूमिलिटी परसोनिफाइड, यू नो हमेशा नम्र भाव में रहते हैं। माता जी को कितना प्रभुपाद का संग मिला ऑस्ट्रेलिया में और कई जगहों पर। तो ऐसे भक्त जो बहुत अपने आप को तुच्छ मानते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, बहुत गिरी हुई हूँ, मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रभु एक ही क्वालिफिकेशन है, मैं पतित हूँ, आप पतित पावन हो, अच्छा मैचिंग है, तो भगवान तुरंत कृपा करें। એટલે રોજ અમે મની મને ભજન ગાના છીએ, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે, તુમ બિના કે દયાલુ જગત સંસારે, પતિત પાવન હેતુ તવ અવતાર, મોસમ પતિત પ્રભુ ન પાઈ બ્યાર. આપકા અવતાર હુએ પતિતોં કા ઉદ્ધાર કરને કે લિયે, ઓર મેરે સે બઢકર પતિત કોઈ નહીં હૈ. ઓર હર ભક્ત કો એસા હી બોલના ચાહિયે. રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી જબ પહેલી વાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સે મિલે, કહાં પર મિલે, રામ કેલી મેં, તો એકદમ સાદે વસ્ત્ર ધારણ કરકે, અપને દાંતો કે બીચ મેં એસે તિનકા રખ કે, ઓર પ્રણામ કરકે ઉનકે ચરણો મેં લોટને લગે, ઓર બોલે જય જય શ્રી ચૈતન્ય જય દયામય, બોલીએ પતિત પાવન જય જય મહાશય, પતિત પાવન હે મહાશય, નીચ જાતિ નીચ સંગી કોરી નીચ કાર્ય, હમ નીચ જાતિ કે હમને મુસલમાનો કી સેવા કી મલેશિયો કી, ઇસલે હમકો બહિષ્કૃત કર દિયા થા, બ્રાહ્મણ પરિવાર સે નિકાલ દિયા ગયા, ઓર હમ ઇતને પતિત હૈ, હમને સુના હૈ આપને જગાઈ મધાઈ કા ઉદ્ધાર કિયા, લેકિન જગાઈ મધાઈ તો વો તો બહોત ઉન્હોને બહોત કમ પાપ કિયે હૈ, હમ કોટી કોટી ગુના જ્યાદા પાપી હૈ. જગાઈ મદાઈ કમ સે કમ નવદીપ ધામ મેં રહેતે થે, ઉન્હોને મલેશિયો કી સેવા નહીં કી જૈસે હમ કર રહે હૈ, ઓર આપકા નામ નિંદા કરતે હુએ લેતે થે. જો આપકા નામ નિંદા કરતે હુએ ભી લેતા હૈ, ગૌરંગા ગૌરંગા ગૌરંગા, જો એક બાર આપકા મજાક મેં ભી નામ લેતા હૈ ઉસકા ઉદ્ધાર હો જાતા હૈ. જગાઈ મદાઈ ને કઈ બાર આપકી નિંદા કી, ઓર એક ચીજ બતાએ પ્રભુ, આપ એક બુરા મત માનના, અગર આપ હમારા ઉદ્ધાર નહીં કરોગે ના, તો આપકો ભી હમારે સે બઢકર કોઈ યોગ્ય પાત્ર નહીં મિલેગા. આપ હમકો પ્રોડક્ટ નહીં બેચોગે, દૂસરા કસ્ટમર નહીં મિલને વાલા, ક્યોંકિ આપ પતિત પાવન હો, હમ પતિત હૈ. કિતની નમ્રતા બોલ રહે હૈ. ઓર વો અભી સોચીએ, સબ જાનતે હૈ કે જગાઈ મદાઈ ટોપ કિલર થે, વો નિયમપૂર્વક નિયમ ભંગ કરતે થે, માંસ ખાના, ચોરી કરના, પરસ્ત્રી સંગ કરના, એ રેગ્યુલર ઘરો મેં આગ લગાતે થે, ઓર જબ કોઈ નહીં મિલતા લડાઈ કરને કે લિયે, ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતે, એક દૂસરે કો મારતે થે. તો એસે વ્યક્તિ સે પતિત કેસે હો સકતે હૈ? રૂપ સનાતન, રૂપ સનાતન ને કોઈ ચોરી નહીં કી થી, કોઈ મર્ડર નહીં કિયા થા, ખાલી મલેચ્છો કી નોકરી ભી ક્યોં કી થી? હિન્દુઓ કો બચાને કે લિયે. નવાબ હુસૈન શાહ ને ધમકી દી થી, અગર આપ હમારી નોકરી કો નહીં સ્વીકાર કરોગે, તો હમ હિન્દુઓ કે લિયે જીના મુશ્કિલ કર દેંગે. તો ઇસીલિયે રૂપ સનાતન ને મંત્રી પદ સ્વીકાર્ય, વૈસે પૈસે કે ચક્કર મેં નહીં સ્વીકાર્ય, લેકિન ઇતની નમ્રતા સે બોલ રહે. મહાપ્રભુ કે આંખો સે આંસુ આ ગયે, બોલે કભી કોઈ સનાતન કોઈ સનાતન, ગીવ અપ યોર હ્યુમિલિટી, માય હાર્ટ બ્રેક્સ ટુ સી યોર હ્યુમિલિટી, આપકી નમ્રતા કો દેખ કર મેરા હૃદય ફટ રહા હૈ. તો ઇસકે કારણ ચૈતન્ય પ્રભુ ઇતને ખુશ હુએ, ગલે લગાએ ઓર બોલે, આજ સે આપકા નામ હોગા રૂપ ઓર સનાતન. મહાપ્રભુ ઉનકે સિર પે હાથ રખને ગયે, લેકિન બોલે નહીં, સિર પે હાથ નહીં, સિર પે અપને ચરણ રખો. અપને અપને સિર કો ભગવાન કે ચરણો મેં સમર્પિત કિયા. વો ચરણ કમલ જો બ્રહ્મા ઓર શિવજી કે લિયે આરાધ્ય હૈ, વો ચરણ કમલ કી ધૂળ કે લિયે લક્ષ્મી દેવી તરસતી હૈ, વો ચરણ રૂપ ઓર સનાતન કો પ્રાપ્ત હુએ ઉનકી નમ્રતા કે કારણ. શિલ ભક્તિ સિદ્ધાંત ઠાકુર કહેતે થે કે સરળતા વૈષ્ણવિઝમ હૈ, સિમ્પ્લિસિટી ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ. પરમ પૂજ્ય ગૌર ગોવિંદ મહારાજ બોલતે હૈ, લોર્ડ ચૈતન્ય ઇઝ પતિત પાવન નોટ કપટી પાવન. પતિત પાવન હૈ ભગવાન, લેકિન કપટી પાવન નહીં, કપટ નહીં કરના. કપટ મતલબ કે ઉપર સે એક અંદર સે દૂસરા, દિખાને કે એક દાંત, ખાને કે અલગ દાંત, હે ના, જો હૈ ભગવાન કે સામને કહે દો, મેં પતિત હું, મેરે અંદર મટીરિયલ ડિઝાયર હૈ, મેં ક્રોધી હું, લોભી હું, લેકિન મેં આપકા હું. બચ્ચા કિતના ભી ગંદા હો, બચ્ચા માન લો અપને શરીર મેં કુછ ગંદગી ભી લગા દિયા હો, તો માં ઉસકો સ્નાન કરા કર ધુલા કર અચ્છે કપડે પહેના દેતા. એસી હમારી ચેતના કલુષિત હૈ. કલયુગ મેં જન્મ લેના, પ્રભુપાદ સીધા બોલતે, બહુ મેં ચેતન ચેતામૃત મેં પઢ રહા થા, પ્રભુપાજી બોલતે ઇન કલયુગ એવરી વન ઇઝ મોર ઓર લેસ જગાઈ મધાઈ. પ્રભુપાદ હમ સબકી સ્તુતિ કર રહે કે જિન્હોને કલયુગ મેં જન્મ લિયા હૈ, હમ સબ જગાઈ મધાઈ કી તરફ. લેકિન ફોર્ચ્યુન હૈ, कलयुग में जन्म लेना कितने सौभाग्य की बात है। देवता भी इच्छा करते हैं कि कलयुग में जन्म हो, संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिले। हम जानते नहीं है कि प्रभुपाद और उनके शिष्य कौन महात्मा हैं, हम इनको साधारण नहीं मानना चाहिए। और कोई भी भक्त जो इस कौन में आया वो साधारण नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हर एक भक्त बहुत पूजनीय है, चाहे भक्तों में दोष भी हो। एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं उसी मंदिर में ज्वाइन करूंगा जहाँ पर सब शुद्ध भक्त हैं। मैंने बोला आप बोल रहे हो कि आप बीमार हो और उसी हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ कोई पेशेंट नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल होता ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाओगे, किसी को खांसी है, किसी के नाक में प्रॉब्लम है, किसी के दांत में प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को कोरोना है, सब प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज हो सकता है। तो इस्कॉन एक विशाल हॉस्पिटल है और शिला प्रभुपाद ये CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है ना, और प्रभुपाद डिवोटीज हैं और हमको दवाई दी जा रही है। दवाई है हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उस दवाई को बहुत गंभीरता से लेना। हम किस क्वालिटी से चैंटिंग करते हैं उसी पर हमारा प्रोग्रेस डिपेंडेंट है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ऐसा, एनेचे औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। महाप्रभु बोल रहे हैं आई ब्रॉट दिस मेडिसिन, मैं दवाई ले आया हूँ, औषधि हरि नाम मंत्र, आप इसको ग्रहण करो। हम बहुत सिंसियरली भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, प्रभु पर भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो। मैं भगवान के चरणों में गिर के भीख मांगता हूँ। हरि नाम वही व्यक्ति जप कर सकता है जो भिखारी मानता है अपने आप को, प्रेम भिखारी। हम प्रेम के भिखारी हैं। राधा रानी की कृपा वही व्यक्ति को मिलता है जो ब्रज में भिखारी के भाव में रहता है। चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो सकता है मकान में भी रह रहे हो, लेकिन भावना ही होनी चाहिए मैं भिखारी हूँ, ब्रज रज के भिखारी। ब्रज प्रेम, ब्रज कृपा, ब्रज रानी, राधा रानी की एक कटाक्ष मिल जाए, राधा कृपा का कटाक्ष मिल जाए। ऐसे रो रो के जो प्रार्थना करते हैं राधा रानी से, मेरे पीछे बोलिए, करुणा करु माई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। जो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, करुणा करु माई करुणा कर, प्लीज हैव मर्सी। प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्णा मंत्र का मीनिंग बोलते हैं, हे राधा रानी हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। जब हम नाम जप करते हैं सच्चे दिल से तो हमें आंखों में आंसुओं भरते हुए पुकारना चाहिए। कहते हमें नकल नहीं करनी है, ये इजी नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर सिखाते हैं, कबे हबे बोलो से दिनामा अपराध घुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बल होबे हृदयो संचार। कब वह समय आएगा जब मेरे अपराध दूर होंगे, शुद्ध नाम की रुचि आएगी। आयु बीतती जा रही है और शरीर छोड़ने से पहले शुद्ध नाम नहीं हुआ तो फिर अगला जन्म लेना होगा। भगवान की इच्छा से अभी मेरा भी 60 कंप्लीट हो जाएगा। जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था तभी मेरी उम्र 25 थी और अभी 60 हो रही है, मतलब बहुत जल्दी बुढ़ापा आ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, उसका आगे सेंटेंस है डेथ इज कमिंग क्लोज टू यू, बधाइयाँ हो मृत्यु करीब आ रही है। तो पहले जब मैं 25 साल में ज्वाइन किया था तो वे सीनियर डिवोटी थे, 50 साल के थे, प्रॉपर डिसाइपल्स 40 साल के थे। तो मैं तो दारी ये तो बहुत सीनियर है, पहले इनका टाइम आएगा फिर मैं जाऊँगा। फिर जब 40 हो गए थे, 40 तो उतना बुरा नहीं है, 50 के बाद वाले लोग की मृत्यु होती है। जब 50 हो गए मैं 50 ही है प्रभु जी, इतना तो कुछ नहीं है, चलता फिरता है, डाइजेशन कमज़ोर है। और अभी 60 हो गए तो भाई 60 ही हुए ना, कोई बात नहीं। तो कभी लगता नहीं है मृत्यु आ रही है, नहीं आप में से किसी को लगता है मृत्यु आ रही है? इल्यूशन है। लेकिन अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक सीक्रेट है जो परम पूज्य सत्स्वरूप महाराज ने शिला प्रभुपाद से पूछा था। ये सीक्रेट मैंने कई बार बताया, आप सब जानते हैं। हाउ कैन आई मेक रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट शिला प्रभुपाद, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ? प्रभुपाद जी बोले, जस्ट थिंक that today is the last day of my life. Aaj mere jeevan ka aakhri din hai. Bas tumko wo koi bhi dusre vicharon ko tyag do. Mera laptop chori ho gaya, koi baat nahi, aakhri din hai. Prasad mein rasgulla nahi mila, waise bhi koi baat nahi, aakhri din. Ye mera japa bacha hai, aaj mujhe kar lena chahiye japa. हाँ, मेरा भागवत पढ़ना बाकी है, मुझे पढ़ लेना चाहिए. मुझे मंदिर की कोई सेवा करनी, ज़्यादा कर लूँ, है ना. अभी अकाउंट क्लोज होने से पहले ज़्यादा डिपॉजिट कर लूँ, है ना. ऐसी तन्मयता होनी चाहिए. मेरे एक बहुत क्लोज भक्त थे, करीब 20 साल पहले, वो अपने ग्रैंडसन, अपने पोते को लेकर चल रहे थे. जनरली जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो पोते से बेटे के बेटे या बेटी की बेटी से ज़्यादा दोस्ती होती है, क्योंकि बेटे बेटी तो स्वतंत्र हो जाते हैं. तो ऐसे लेकर चल रहे थे, अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ, मृत्यु हो गई. तो मैंने लेटर लिखा और बताया, महाराज जी ये इनकी मृत्यु हो गई, तो क्या गति होगी. तो मैंने पूछा कि उसका उस दिन के लिए उसने अपना जप पूरा किया था कि नहीं. तो मैंने बताया कि जप पूरा हो गया था. तो बोले ऐसी ऑस्पिशियस, अगर एटलीस्ट उसने अपने हमेशा रोज़ 16 माला कर लिए तो बहुत अच्छी गति. इसलिए मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि जिस दिन मृत्यु होने की संभावना है उस दिन सवेरे जप कर लेना चाहिए, है ना. ये ना, जैसे मान लो शनिवार रविवार है, वो तो छुट्टी का दिन होता है यमदूत के लिए भी, नहीं करेक्ट प्रभु जी. यमदूत को कौन से दिन छुट्टी होती है? यस, किसी को मालूम है कोई फ्रीक्वेंट विजिटर कौन है यहाँ पर? यमदूत को कभी छुट्टी नहीं होती, स्पेशली आजकल कलयुग में तो वो डबल शिफ्ट काम करते हैं. कस्टमर ज़्यादा है, सर्विंग करने वाले कम हैं, ये ना. तो इसीलिए हर दिन यही सोचिए और नाम जप को बढ़ाइए. सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा तात्पर्य. मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा ही चैतन्य चरितामृत बोल दिया, क्योंकि मैं चाहता था, ये मैं प्रमोट करना चाहता था. व्यक्ति जनरली प्रमोट करने वाले बोलते नहीं, लेकिन मैं निर्लज्जता से बोल रहा हूँ कि आप चैतन्य चरितामृत लीजिए, और अगर आपके पास है तो भी ले जाइए कम रेट में, और अपने मित्रों को गिफ्ट दीजिए, विवाह में, जन्म में, मृत्यु में, सब. कोई मृत्यु भी हो जाए तो उसके फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, है ना. सबसे अच्छा गिफ्ट वही है, नहीं? क्योंकि जन्म या मृत्यु में क्या अंतर क्या है, नहीं? जन्म का मतलब है आत्मा नए शरीर में आई, और मृत्यु का मतलब नया शरीर की तैयारी कर रहे हैं, नहीं? तो प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ दिस. प्रभुपाद ने अपने पूरे एक लीटर खून बहाया है किताबों को लिखने में, और अगर हम वो पढ़ते हैं तो प्रभुपाद कितने खुश होंगे. जैसे मान लो किसी भक्त ने फीस्ट बनाया, खीर बनाया, पकोड़ा, गाजर हलवा, और आपको दे रहे और आप ले नहीं रहे और आप फेंक रहे हैं, तो कितना ख़राब लगेगा उसको. तो प्रभुपाद कितने दुखी होंगे, देखेंगे इस्कॉन के भक्त किताबों को ले लिए लेकिन पढ़ नहीं रहे. मैंने ऐसे ही कई भक्तों को गिफ्ट दिया चैतन्य चरितामृत, फिर एक साल बाद मैं घर में गया, मतलब मध्य लीला भाग एक निकालो तो तुरंत वो चाकू लेके बॉक्स खोला. मैंने बोला क्या हुआ? बोले एज इट इज़ रखे, एज इट इज़ चैतन्य चरितामृत एज इट इज. तो एटलीस्ट 15 मिनट रोज. और दूसरा बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि नाम जप का चैतन्य चरितामृत से कनेक्शन है. अगर आप चैतन्य चरितामृत ज़्यादा पढ़ोगे ना, अपने आप नाम जप अच्छा होगा, क्योंकि नाम के अवतार, नाम बांटने वाले अवतार गौरंग महाप्रभु है, प्रेम अवतार. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम. इसलिए जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे ना, अपने आप नाम में रुचि आएगी. और दो पॉइंट है तात्पर्य में, प्रभुपाद बोल रहे हैं शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में, मदन मोहन और गोविंद देव के बारे में बता रहे हैं. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मदन मोहन संबंध विग्रह हैं, गोविंद देव अभिधेय विग्रह हैं, और गोपीनाथ प्रयोजन है. तो भक्ति में तीन लेवल हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. संबंध का मतलब है मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उसके आचार्य कौन है सनातन गोस्वामी, और उसके विग्रह कौन है राधा मदन मोहन. अभिधेय तत्व के आचार्य हैं रूप गोस्वामी और विग्रह हैं गोविंद देव, और प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और विग्रह हैं गोपीनाथ. अभी देखिए इसमें सबसे सीनियर सनातन गोस्वामी, उनसे जूनियर रूप गोस्वामी और सबसे जूनियर रघुनाथ दास गोस्वामी. लेकिन भगवान का अरेंजमेंट देखो, सबसे सीनियर व्यक्ति पहला लेवल पढ़ा रहे संबंध, उससे ज़्यादा जो जूनियर है वो मिडिल स्टेज सिखा रहे, और रघुनाथ दास तो बहुत ही जूनियर हैं और वो प्रयोजन सिखा रहे. भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती, सनातन गोस्वामी नहीं बोलते अरे रघुनाथ तुम तो अभी ज्वाइन हुआ, तू क्या सिखा रहे, तेरे को मैंने सिखाया था, हाँ तुम हायर लेवल सिखा रहे हो. भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती, जब सुखदेव गोस्वामी भागवत दे रहे हैं, सुनने में नारद मुनि सामने बैठे हैं, व्यास देव भी बैठे हैं। कई बार भक्तों को ईर्ष्या होती है, अरे मैं सीनियर हूँ, मैं कैसे लेक्चर सुनूँ। लेकिन प्रभुपाद, मुझे याद है जब मैं प्रभुपाद जी के मुझे दर्शन हुए थे बम्बई में 1977 में, प्रभुपाद जी का आखिरी बम्बई का आखिरी पंडाल प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद आते थे रोज, कई बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बैठ के सुनते थे। उन्होंने गिरिराज महाराज और दूसरे भक्तों को बोला आप लोग लेक्चर दो, और प्रभुपाद सुनते थे। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं अपने बुक्स को पढ़ता भी हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं क्यों पढ़ता हूँ ये बुक्स को? प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन आई सिट टू राइट, कृष्णा कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू मी एंड ही टेल्स मी व्हाट टू राइट। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे बाजू में आके कृष्ण भगवान बैठते हैं। प्रभुपाद के वर्ड है, ऐसा नहीं कि हृदय से बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण बैठते हैं और वो मुझे बताते हैं कि नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ लिखना। तो आप सोचिए कि चैतन्य चरितामृत जो गौड़ीय वैष्णव का सबसे ऊंचा ग्रंथ है, जब प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, मतलब और भी ज़्यादा मीठा होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब भागवत आस्वादन करते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ऐसे प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे तो चैतन्य लीला और भी ज़्यादा मधुर हो जाती। इसीलिए बोलते हैं श्रूयतम श्रूयतम सदा, बोलो गीयतम गीयदा, चिंतयतम चिंतयतम सदा, श्री चैतन्य चरितामृत। श्रूयतम श्रूयतम सदा, इसका अर्थ कोई बताएगा? बार बार सुनो। गीयतम गीयतम, गीयतम मतलब गाओ, मुदा मुदा मतलब आनंद के साथ, और चिंतयतम चिंतयतम सदा, बार बार चिंतन करो, किसका? श्री चैतन्य चरितामृत। अभी हर जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे सर्फ का एडवर्टाइजमेंट होगा, वो बोलेगा ये बेस्ट पाउडर है, है ना, ये बेस्ट पाउडर है। क्यों? क्योंकि मैं बेच रहा हूँ इसलिए बेस्ट है ना। लेकिन मैं इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, लेकिन चैतन्य चरितामृत पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा ग्रंथ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे अगर प्रलय आ जाए तो, अगर आपके पास सब कुछ डूब रहा हो तो भी आप ये दो किताबों को रखो, भागवतम और चैतन्य चरितम, और उसमें भी अगर एक रह सके तो चैतन्य चरितम। वो अपने शिष्यों को बोलते थे चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत 100 बार पढ़ो। है हमारे इस्कॉन में परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज, उन्होंने 120 बार पढ़ लिया चैतन्य चरित, ये 5 साल पहले की बात है, और अभी भी पढ़ते रहते हैं क्योंकि टेस्ट आ जाता है। जब टेस्ट आता है तो हम देखते नहीं है, नहीं जैसे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो 1 2 3 खाते रहते। आपको रसगुल्ला ज़्यादा खाए तो पेट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत ज़्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, चक्कर आना वॉमिटिंग कोई डर नहीं है। तो संबंध तत्व के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी और मदन मोहन उनके विग्रह हैं। तो संबंध तत्व में क्या सिखाते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि अभिधेय तत्व, अभिधेय तत्व है मतलब उन क्रियाओं को करना जिससे भगवान के साथ मेरा संबंध जागृत हो जाए। अभिधेय तत्व है श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा सुनना, भागवत चैतन्य चरितामृत या भगवत गीता और हरि नाम जप करना। नाम जप प्रधान क्रिया है। भक्ति विनोद ठाकुर, जीव गोस्वामी सबका कहना है अगर आप और भी कोई भक्ति का कार्य कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंदिर में सेवा कर रहे हो, उसके साथ साथ हरि नाम करना जरूरी है। हरि नाम के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और हरि नाम स्वयं करना होता है। ऐसे कोई सेवा मैं नहीं कर सकता प्रभु जी आप कर लो, लेकिन जप करना बोले प्रभु जी आप मेरे लिए जप कर लो, ऐसे वो नहीं सकता। प्रसाद खाना और जपा करना वो स्वयं करना पड़ता है। मैं बोलूँ वृंदावन बिहारी प्रभु मेरे को टाइम नहीं, आप मेरे लिए प्रसाद खा लो, तो वो तो खा लेंगे लेकिन मेरा पेट नहीं भरेगा। हियरिंग चैंडिंग, अभी परसों एकादशी, यहाँ पे 13 तारीख को है ना, एक्चुअली मैंने अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया, मुझे लगा 12 को एकादशी है क्योंकि महाराष्ट्र में महाद्वादशी है, तो पता नहीं अभी अगर मैं 13 को मैं पूना पहुंच रहा हूँ, वहाँ द्वादशी है, वहाँ फास्टिंग नहीं है, अभी पता नहीं क्या करना है, क्योंकि आप मुझे सलाह देना बाद में। मुझे 13 को जाना है तो फिर ट्रैवलिंग एकादशी, आधा एकादशी है आधा वहाँ। एनीवे, तो एकादशी के दिन मेरा रिक्वेस्ट है सब भक्त जहाँ भी हैं एक्स्ट्रा जप करें। मैं तो 13 को मुझे 10 बजे जाना है तो सुबह तो मैं जप करूँगा, और 12 को भी करें, पल परम पूजा जप, तो स्वयं महाराज का व्यास पूजा भी है। एक्चुअली इसका उनके सारे गुरु यही चाहते हैं कि शिष्य ज़्यादा जप करें, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी कुछ साल पहले मैं उनका व्यास पूजा का एड्रेस सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो नाम जप सीरियसली करो। इतने गुरु महाराज आके रसगुल्ला गुलाब जामुन अर्पण किया, गुरु जी बोले जप किया कि नहीं? गुरु जी वो तो बाद में कर लूँगा, आपके लिए गुलाब जामुन बनाया है। गुरु जी बोलेंगे अरे बाबा मैं आया किस लिए हूँ, गुलाब जामुन खाने के लिए थोड़ी आया हूँ। बहुत कम गुरु हैं जो धरती पर अवतार लिए हैं गुलाब जामुन खाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इट गिव्स द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन ही सीज द डिसाइपल मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। गुरु को सबसे बड़ी प्रसन्नता कब होती है? जब शिष्य भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जब शिष्य नाम जप बढ़ाते हैं, यू नो। मैंने भी एक बार एक भक्त ने ऐसे पूछा था परम पूज्य राधानाथ महाराज से कि आपके व्यास पूजा पे क्या चीज़ आपको पसंद है, तो महाराज बोले द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज चैंट द होली नेम विथ फेथ अटेंशन एंड ह्यूमिलिटी। सबसे अच्छा शिष्य जो गुरु को भेंट दे सकता है वह ध्यानपूर्वक जप करना श्रद्धा के साथ और नम्रता के साथ। त्रिनादपि सुनीचे न करोरपि सहिष्णु न अमाने न मान दे न कीर्तनीय सद। ये जो भाव जिसमें है वो हमेशा हरि नाम ले सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में दो गुरु का नाम ले रहे हैं, रूप गोस्वामी और सनातन, और दोनों के अंदर वही गुण था जैसे मैंने बताया जब चैतन्य महाप्रभु से मिले। मैं एक दो घटना बोल के एंड करूँगा, समय हो रहा है। प्रभुपाद के पास एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास तीन प्रकार के क्लास के लोग होते हैं, उसके लक्षण बता रहे थे। तो एक पागल व्यक्ति था, वो खड़ा हो गया और बोला स्वामी जी आप कौन से क्लास के हो? आप बोल रहे फर्स्ट क्लास, आपकी क्या औकात है, विच क्लास यू आर? और डिवोटी इतने गुस्से हो रहे थे सोच रहे उठा के पटक दें उसको, है ना, सीधे को लोग भेज दें, है ना। तो प्रभुपाद बहुत नम्रता के साथ सिर झुकाए और बोले आई एम फिफ्थ क्लास, मैं फिफ्थ क्लास। उनके आंखों में आंसू आ गए, बोले बट आई एम ट्राइंग टू सर्व ऑल ऑफ यू, मैं आप सबकी सेवा करने का प्रयास कर। तो प्रभुपाद के अंदर वो नम्रता थी, और हम प्रभुपाद के फॉलोअर हैं, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमानि न मानते न। इस श्लोक को कम से कम दिन में 10 बार 15 बार 20 बार याद करना चाहिए। कितने भी हमारे साथ इंसल्ट हो बुराई हो हमें सहन कर लेना। अगर कोई भक्त हमारे साथ गुलाब बुरा व्यवहार करता है तो हमें त्रिनादपि सुनीचे न आगे बढ़ने मदद कर रहा है। अभी परम पूज्य एक बृहद भागवत महाराज बता रहे थे पूना में एक घटना कि ह्यूमिलिटी का मतलब है नम्रता, कि अगर कोई इंसल्ट करे तो सीधा बीड बैग में हाथ डाल देना, बस कोई बुरे शब्द बोले बस भगवान का नाम लेना। तो प्रभुपाद को कितने सारे कष्ट सहन करने पड़े, कितने वो सहनशील थे। तो हमें जो भी कष्ट होता है कठिनाई होती है इस्कॉन में रहने में, क्योंकि भक्तों के साथ रहने में थोड़ा संघर्ष तो होता ही है, थोड़ा सा अलग अलग ओपिनियन अलग अलग व्यवहार, लेकिन प्रभुपाद की खुशी के लिए हम एकत्र हैं। और हम सब हमें देखना चाहिए कि हर डिवोटी मेरा शिक्षा गुरु है, हर डिवोटी से मुझे कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। किसी से श्रवण करने की, किसी से कीर्तन, किसी से फूल माला बनाना, किसी से कपड़े, किसी के मैनेजमेंट, हर कोई व्यक्ति मेरे गुरु हैं। तो इसलिए अमान ही न मान देना, हर एक को प्रणाम करना है, हर एक को प्रभु मानना है, और मैं दास दासानुदास। गोपीर भरतूर पद कमलयोर, बोलिए दास दासानुदास। दो सेकंड आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर कि हम ये भावना को स्वीकार कर सकें। ना हम विप्र न च नरपति, मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं, बस गोपीर भरतूर पद कमल में दास दासानुदास। और इस भाव से जोर से पुकार सकें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। माता जी यू लाइक टू से समथिंग, नर्तकी माता सम कॉमेंट्स? यस माता जी, पहले माता जी बोलेंगे उसके बाद आप बोलिए।
मैं उसी समय वहाँ थे तब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे, मैं पंच श्रेणी का आदमी हूँ और मैं सबों का सेवक हूँ। मैं ऑडियंस में बैठ रही थी।
यू आर इन दैट क्लास?
Yeah, in Sweden.
Sweden में थे. माता जी personally थे वो class में.
और मैं ज्यादातर सारे भक्त लोग उनके पास बैठे थे on the stage. तो मैं audience में बैठ रही थी क्योंकि मेरी लड़की बहुत छोटी थी और मैं जल्दी बाहर जा सकती थी बिना डिस्टर्बेंस. और ये आदमी जो उनको चैलेंज किया, चुनौती किया प्रभुपाद, वो मेरे पास बैठ रहे थे, यू नो. और सारे भक्त लोग उनको उन पर आक्रमण करना चाहते थे, यू नो. तो प्रभुपाद उनको शांति किया और ये बता रहे थे. सो तब हम समझ रहे थे, यू नो, कैसे हम दूसरों से व्यवहार करना चाहिए. ऐसा वापस और ये से to argue back is not good, you know. In fact, Srila Prabhupada mein ke aankhon mein aansu aa gaya kyunki wo bhi samajh rahe the. I mean, you know, Srila Prabhupada ne bola pehla shreni matlab brahman, kshatriya, vaishya, sudra, aur ye log to koi nahi jante the. Brahman shayad brahman ke bare mein shayad sun rahe the, to kshatriya, vaishya, sudra इसके बारे में नहीं जानते थे, यू नो. सो इसलिए उन्होंने एक श्रेणी का आदमी ऐसा बता रहे थे. ऐसा नहीं चाहते थे कि बोलना चाहते थे कि एक सबसे अच्छा आदमी है, यू नो. ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, केवल बताना ये लोग, यू नो. सो एंड उनके आंख में आंसू आ गया. मैंने सोचा श्रील प्रभुपाद बहुत दुख लग रहे थे क्योंकि ब्राह्मण, उन्होंने दूसरे समय बता रहे थे, ब्राह्मण लोग थोड़ा सा गर्वित हो गया और दूसरे, यू नो, मतलब शूद्र लोगों को नहीं संभाल रहे थे और उनको आदर भी नहीं दिया. और इसलिए वो मुसलमान बन गए. क्योंकि अगर आपको कोई आदर नहीं दिया जाता है, आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप हिंदू हैं, यू नो. अगर कोई गवर्नर, आई मीन वो मुसलमान है, वो हिंदू लोगों को ज्यादा टैक्स.
मुसलमान लोग ऐसे करते थे, हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था ज्यादा.
सो प्रभुपाद ने बहुत दुख लग रही थी कि ब्राह्मण लोग इतना हाउ डू से ऐसा व्यवहार किया. सारे लोग उनको घृणा किया, यू नो, दूसरे देशों में भी, यू नो. और इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म नहीं फैला सकते थे, यू नो. सो प्रभुपाद ये रिवर्स किया सब उनके नम्रता से.
थैंक यू. माता जी का प्रश्न है.
प्रभु जी, राधा श्याम सुंदर के बगल में जो राधा रानी विराजमान हैं, और इनके अलावा जैसे राधा दामोदर मंदिर जाने का काम पड़ता है, बरसाना जाने का काम पड़ता है, तो जो श्याम सुंदर के बगल में विराजमान हैं उनसे जो प्रार्थना की जाती है, तो ये ही प्रार्थना बाकी विग्रहों के सामने भी कर सकते हैं? कुछ फर्क है क्या?
नहीं, सब विग्रह में कोई फर्क नहीं है.
मतलब
अलग अलग भाव है जिसका, जो भाव है. जैसे जो इस्कॉन में, वृंदावन में रह रहे हैं, वो राधा श्याम सुंदर को ही श्रेष्ठ मानेंगे. कोई व्यक्ति है मायापुर में रह रहे, वो राधा माधव को ही श्रेष्ठ मान रहे. सब एक ही हैं. जय. आई थिंक समय हो गया. श्रील प्रभुपाद की